نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی والكاظمین الغيظ اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں واللہ يحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہ سورت آل عمران کی آیت ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے ایک حصے پر بات کریں گے. پہلا حصہ تو بتاتا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کھلے چھپے یعنی تنگی میں بھی آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اچھے اخلاق سکھائے ہیں نا ان کے اندر یہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے خرچ کریں خرچ کریں. خرچ کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مال خرچ کرنا, خرچ کرنے میں کسی کو کسی کی ہیلپ کر دینا, کسی کو کسی طرح کی کسی کام میں فیسیلیٹیٹ کر دینا, کسی کو سواری دے دینا, کسی کے گھر کے کسی کام کاج میں مدد دے دینا, کسی کا سامان اٹھا دینا, کسی کو پانی پلا دینا, سب یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو فراغِ دل سے تعلق رکھتی ہیں, دل کی وسعت سے تعلق رکھتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا وسعت قلبی, اس سے تعلق رکھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اخلاق سکھائے جن میں دل کی وسعت سے تعلق ہے, اور اسی میں ایک کام ہے معاف کر دینے کا, یہ بھی دل کی کشادگی سے ہی تعلق رکھتا ہے. اور اس آیت میں بھی کیا ہے, والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں. کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے, کوئی تکلیف پہنچے, کوئی کسی نے آپ سے کوئی قرض لیا ہو اس کے بعد وہ واپسی نہیں کر رہا, تو اس میں معاف کر دینا, معافی کی روش اختیار کرنا. آج ہم اس پہ بات کرنے کا اس لیے میں نے سوچا کیونکہ دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اخلاقیات میں سے, اور ہم ظاہر ہے قرآن پاک الحمدللہ اب تفسیر سے سیکھ رہے ہیں. قرآن پڑھنا سیکھنا, ٹیسٹ دینا, یا آپ کو کہیں 100 نفل آپ پڑھ لیں, وہ پڑھنا بھی ایون بہت آسان ہے. کوئی آپ کو روزہ رکھ لیں, روزہ رکھنا بھی آسان ہے. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ فلاں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی اس کو معاف کر دیں, تو یہ کام بے حد مشکل ہے. انسان کہتا ہے مجھ سے 100 بیٹھکیں لگوا لو لیکن معاف کرنے کو نہ کہو. آج یہ جو آج کا درس ہے, جو آپ سے آج میری بات ہے, آپ کے لیے نہیں, میں کہوں گی میں اپنے لیے کر رہی ہوں. اس لیے کیونکہ انسان, ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہم بھولتے بھی ہیں, اور انسان کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے, یہ میرے اپنے لیے, آپ بھی سوچیں آپ کے لیے. ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کو وسعت قلبی کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان اس جگہ پہ آ کے ہمیں مات دے دیتا ہے. ہمیں ہم جتنا بھی سوچیں نا کہ ہم نیکی کریں, ہم دوسرے کو معاف کریں, شیطان انسان کو اس کا غصہ بار بار یاد دلاتا ہے. شیطان انسان کو معاف نہیں کرنے دیتا, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے, شیطان بار بار ان کی وہ تکلیف ہمیں یاد دلاتا ہے. اور یاد رکھیں, انسان سب سے زیادہ شیطان کے نرغے میں اس وقت آتا ہے جب وہ غصے میں ہو یا اس کے اوپر کسی خواہش کا غلبہ ہو. یہ دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر شیطان سمجھ لیں حاوی ہو جاتا ہے. حاوی ہونا آسان ہوتا ہے, ولنریبل ہوتا ہے نا انسان. جیسے ایسا موسم آتا ہے جس میں سردی ہوتی تو ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں, جلدی ہمیں کولڈ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے, یا ایسا کوئی اور موسم آتا ہے جس میں ہمیں ہیٹ سٹروک لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس اتنا زیادہ وہ شیطان کے काबू में आने का उसका चांस होता है ना, क्योंकि शैतान बहुत आसानी से उसको कैप्चर कर लेता है फिर, और फिर उसको माफ़ नहीं करने देता। तो एक हदीस आपके सामने इस सिलसिले में रखूंगी, बहुत ही प्यारी हदीस तिब्रानी की है ये। عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس نے یہ حدیث روایت کیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے زیادہ برے لوگ کون سے ہیں؟ اب سوال کرنے کے طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ دیکھیں جب سوال کیا جاتا ہے نا، تو ذہن انسان کا واقعی جلدی جلدی پھر سوچتا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سوچیں کہ آپ کے نزدیک کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت برے لوگ ہوں۔ اس کا جواب پھر دیکھیں صحابہ کرام نے فرمایا، قالو، انہوں نے فرمایا بلا ان شئت یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اگر آپ چاہیں یا رسول اللہ تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ قالا، فرمایا ان شرارکم الذی ینزل وحدہ، تم میں برے لوگ وہ ہیں، نمبر ون وہ کہ جو اترتا ہے تو اکیلا اترتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مہمان اکیلے اترا کرتے تھے، یعنی اب مہمان اترا کرتے تھے کسی کے گھر میں۔ اکیلے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا وہ اپنا مہمان خود ہی بن جاتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا مال، اس کی توجہ، اس کی خدمت صرف اپنے لیے ہوتی ہے، وہ خود ہی اپنا مہمان بنا بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو ہر وقت فکر رہتی ہے، تو اس چیز کی رہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کماؤں، میں کیا کھاؤں، میرے بچے، میرا گھر، میں، سمجھ آئی؟ یہ بہت برے لوگ ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ دوسروں کے لیے نہیں جیتے، وہ صرف ان کا جینا اپنے لیے ہے۔ وہ ہر وقت سوچتے ہیں تو اپنی ہی سوچتے ہیں، ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی پڑی رہتی ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں نا کئی لوگوں کو فلانی کو تو بس اپنی ہی پڑی رہتی ہے، اس کو نہیں کسی اور کا، یہ بس اپنا ہی سوچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نمبر ون کس کا فرمایا؟ یہ لوگ ہیں جن کو بس اپنی ہی پڑی رہے، بس ہر وقت ان کے ذہن کے اوپر اپنی ہی فکرات رہیں، یہ بہت برے لوگ ہیں۔ نمبر ٹو، وَيَجْلُدُ عَبْدَهُ، اور وہ سختی کرتا ہے اپنے غلام کے ساتھ۔ آج غلام تو نہیں ہے، لیکن جو بھی انسان کے سبارڈینیٹس ہیں، جو بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں، جو بھی آپ کے جن کے اوپر آپ انچارج ہیں، ان کے سختی کا برتاؤ کرنا، برا بھلا کہنا ان کے اوپر، یعنی ہو سکتا ہے مار پیٹ کرنے کا ہو، یا جہاں انسان کا بس چلتا ہو وہاں پہ جس حد تک سختی کر سکتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے دوسرے سے تو اس پہ سزا دینا۔ اب ہمارے مثال کے طور پہ نوکر چوکر ہیں، تو ہم ان کی حد تک تو اپنے آپ کو پورا اتھارٹی سمجھتے ہیں اپنی، کہ اب ہم نے ان سے بات کرنی تو سختی سے ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ سر پہ نہ چڑھ جائے۔ ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، پھٹکار دینا، برا معاملہ کرنا، یہ لوگ بہت برے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم میں کتنے سارے لوگ ہیں جو ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے کیونکہ یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح کیا جائے، ورنہ یہ ان سے کام ہم کیسے لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بہت برے لوگ ہیں۔ اور کیا؟ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور وہ دے سکتا ہے جس چیز کو، اس کو بھی روک لیتا ہے۔ یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم دے سکتے ہیں کسی کو، ہمارے اتنے کام کی بھی نہیں ہوتی، لیکن بس نہیں دینی، خود ہی اپنی لے نا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ہم بہت آسانی سے، مثال کے طور پہ آپ کہیں آ رہی ہیں، تو اب آپ کیا ہے، راستے میں کسی کو رائڈ دے سکتی ہیں، کچھ نہیں آپ کی گاڑی کا بگڑ جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کیوں، میں کیوں کروں، ہر دفعہ میں ہی کروں، میں کیوں دوں، چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کے کام کی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کیوں۔ تو یعنی روک دیتا ہے اپنی عطا کو، اپنے دینے کو روک دیتا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس میں دوسروں کا حصہ نہیں نکالتا۔ پھر آگے اسی حدیث میں قالا، فرمایا افلا انبئکم بشر من ذالک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا کون ہے؟ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ تو برے ہیں، ان سے بھی زیادہ کوئی برا ہے؟ قالو، لوگوں نے کہا بلا ان شئت یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اگر آپ چاہیں یا رسول اللہ۔ قالا، فرمایا من یبغض الناس، جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے، انسانوں سے بغض رکھتا ہے۔ यानी क्या मतलब हुआ इंसानों से बोझ रखने का, यानी इंसानों से कराहत रखता है, उनको बुरा समझता है, लोगों को का एहतराम नहीं करता, उनको इज्जत नहीं देता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। जैसे नहीं होता लोगों से हर वक्त शिकायत रहना, फलां भी बुरा। आप लोगों से मीठे अंदाज में बात करते हैं, उसके बाद वो घर से बाहर ही निकलते हैं तो आप कहते हैं देखा था कैसी थी, बस ये तो ऐसी ही है, ये तो ये है, ये यानी हर एक के जिसको कहते हैं ना वैर पड़े रहना, उसके पीछे पड़े रहना, हर एक के अंदर आपको कीड़े नजर आ रहे हैं, अगर हर एक से बोझ रखना। बाज लोग ऐसे होते हैं उनको हर एक से शिकायत है, हर एक से बुग्ज है, हर एक से नफरत है, हर एक बुरा लगता है, तो जाहिर है फिर लोगों को भी फिर वो पसंद नहीं होते लोग। तो जो लोगों को नापसंद करता है लोग भी उसको नापसंद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोगों से बुग्ज रखता है, वायो बगी दूना हो, और वो उससे बुग्ज रखते हैं। एक हदीस में है ना कि उसमें कोई खैर नहीं है जो ना किसी से मोहब्बत करता है ना कोई उससे मोहब्बत करता है। यानी अगर आपको किसी कोई भी नहीं पसंद आता, हर बंदे में कोई ना कोई ऐब है, इसी तरह लोग भी आपसे मोहब्बत नहीं करते, तो आप समझ लें कि आप में कोई खैर नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला अफला उनब्बिकुम बिशर मिन ज़ालिका, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं इससे भी ज्यादा बुरा कोई बंदा है। कालू साहबा कराम ने फरमाया भला इन शेता या रसूलल्ला, क्यों नहीं अगर आप चाहें या रसूलल्ला। कितने बादब थे ना साहबा कराम, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर बताएं या रसूलल्ला। काला फरमाया अल्लदी ला यकीलूना अशरतन वला यकबिलूना माज़िरतन वला यगफिरूना ज़म्बन। तीन बातें बताइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आज हमारे लिए जिस बात पर हमने, जो हमारा आज का टॉपिक है कि ये इससे भी बढ़ के बुरे लोग वो हैं। आप सोच लेंगे कितने ज़्यादा बुरे हैं, इससे भी बढ़ के बुरे लोग वो हैं कि अगर कोई ख़ता किसी से हो जाए या कोई ऐसी बात कह दे जो उनको नागवार गुजरे और वो शख्स माफ़ी मांगे या एक्सक्यूज़ पेश करे, उज़र पेश करे, मगर वो उसे माफ़ ना करें, ये उससे भी ज़्यादा बुरे लोग। देखें इससे भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर का दर्जा इनका बताया, हालांकि आगे भी हदीस है। देखें काला फरमाया अफला उनब्बिकुम बिशर्म मिन ज़ालिका, इससे भी ज़्यादा बुरे लोग ना बताऊं। कालू बला इन शिअता या रसूलल्लाह, फरमाया सहाबा ने क्यों नहीं अगर आप चाहें या रसूलल्लाह। काला फरमाया मन ला युर्जा खैरुहु वला युमनु शर्रुहु, वो जिससे भलाई की उम्मीद ना रखी जाए और जिसके शर से लोग महफूज ना हो, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। ये एंड था इसका। मगर ये जो तीसरे नंबर पे लोग थे ना, आज हम इनकी बात करते हैं कि यानी गुस्से को पीते नहीं हैं, माफ़ नहीं करते, गुस्सा अंदर दबा के रखते हैं। ये जाहिर सी बात है, जब आप किसी को माफ़ करना होगा तो गुस्से पे काबू पाना होगा ना, गुस्से को पीना होगा, ये गुस्से को नहीं पीते। और मैंने अभी आपको जो सूरह आले इमरान की आयत अभी आपके सामने पढ़ी है ना, वल कैदिमीन अल गईज, पहले आया गुस्से को पी जाने वाले, उसके बाद फरमाया वल आफीना निन्नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले कि चलो ठीक है कर दिया, मैंने दरगुजर किया, मैंने माफ़ कर दिया। पहले आपको गुस्से को पीना पड़ेगा, अपने गुस्से को दमाना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से को अंदर रखे छोड़ते हैं, उसको पालते जाते हैं, पालते जाते तो कभी भी आप माफ़ नहीं कर सकते। देखें हमेशा आपने देखा होगा कई जगहों पे, मुस्लिम की भी एक रिवायत है और भी जगहों पे आपने देखा होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और माफ़ कर देना ये साथ साथ आता है। जैसे मैंने आपके सामने ये आयत भी अभी पढ़ी है, इसी तरह मुस्लिम की जो रिवायत है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कम नहीं होता, इसी तरह किसी को माफ़ कर देने से इंसान की इज्जत में कमी नहीं आती। और तीसरी बात फरमाई और जो अल्लाह की खातिर आजी इख्तियार करता है, अल्लाह की खातिर झुक जाता है, अल्लाह की खातिर नीचा हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। यानी माफ़ कर देने से सबसे पहले शैतान हमारे दिल में क्या लाता है, तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, इसने तो रोज़ की रूटीन ही बना लेनी है, इसका तो काम ही यही है, तो तो माफ ना करना, देखना जाने ना देना। हालांकि माफ कर देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के क्या फरमाया, तुम्हारी इज्जत ऊपर होगी। हम चाहते ना हमारी इज्जत बुलंद हो, इज्जत की बुलंदी किस में है, ग्रजिज रखने में नहीं, माफ कर देने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाशी आते हैं, बताए ना वाशी कौन थे। वाशी वो है जिसने हज़रत हमज़ा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हैं, असदुल्लाह अल्लाह के शेर, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने में पेश पेश होते थे, तो हिंदा ने वाशी को तैयार किया था कि वाशी अगर तू अपनी आज़ादी चाहता है तो हज़रत हमज़ा को तूने कत्ल करना है। ओहद के मैदान में ये हज़रत हमज़ा के पीछे लग गया था और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को शहीद किया था, जिनकी शहादत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर ज़्यादा गम था, इस कदर ज़्यादा गम था कि यानी अल्लाह ताला ने तसल्ली दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेहद ज़्यादा मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा से। और यही वाशी थे कि इनके बारे में ये कह दिया गया था कि जहाँ पे इनको पाया जाए इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और इन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब क्या था, इनको देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा याद आते थे, कैसे मेरे चचा को शहीद किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वाशी मेरे सामने ना बैठा करो, मेरा गम ताज़ा हो जाता है। इतना अंदर गम था अभी तक, लेकिन माफ़ कर दिया था। हालांकि आपका एक इशारा होता और सहाबा कराम इनकी गर्दन उड़ा देते। हिंदा जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा चपा लिया था, मुसला किया था, नाक कान काटे थे, मैं कहती हूँ कोई दुश्मन भी ऐसे नहीं करता जैसे इस औरत ने किया था। और उसके बाद जब मक्का फतह हो गया तो ये भी कुछ औरतों के बीच में छुप के आई, इसने नकाब किया हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान ना जाए, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो इतनी ऊंची फैमिली की थी उस ज़माने की, तो उसे रहा नहीं जा सका एक बात के ऊपर, उसने आगे से कुछ बोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि ये हिंदा है, लेकिन माफ़ कर दिया उसको। यानी आज कोई दुश्मन भी ये ना करेगा कि किसी की अज़ीज़ किसी के प्यारे का मुसला करे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, मामूली बात नहीं थी, हज़रत हमज़ा का कलेजा चबा लेना। आप देखें फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखें, आपकी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जिसने, अपने ही खालाजाद भाई ने, एक तो रिश्तेदारी और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट क्या था कि ये वो थे जिनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक माली मुआवनत किया करते थे, इनको यानी सपोर्ट किया करते थे फाइनेंशियली। और आप सोचें हमारे बच्चे को भी कोई कह दे ना कोई बात कि तुम्हारा बच्चा तो इस तरह उस तरह, तो हम माइंड कर लेते हैं, और कहाँ किसी की बेटी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा देना कि जिससे उसका घर टूट सकता था, तलाक हो सकती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कसम खा ली थी कि मैंने आज के बाद इनकी माली मदद नहीं करनी। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में ये आयत उतारी, वल याफू वल यस्फहू, आप माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, चाहिए कि माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तुम नहीं ये चाहते, तुम भी तो अपने लिए माफ़ी चाहते हो, तो क्या तुम नहीं ये चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तुम भी तो लोगों को माफ़ कर दिया करो। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसी वक़्त फरमाया, मैं क्यों नहीं क्यों नहीं, अल्लाह हम चाहते हैं कि तू हमें माफ़ कर दे। फौरन अपनी कसम का कफारा दिया और फरमाया कि आज के बाद से मैं दोबारा मुस्तहकी जो माली मुआवनत मैं करता था वो दोबारा शुरू कर दी। हम हों तो हम ये कहें कि नहीं इसने तो मेरे साथ ये किया, मैं क्यों करूँ, मैं कहीं और दे दूँगी, सदका ही देना है ना, कहीं और दे दूंगी, इसको नहीं देना। तो देखें, इंसान एक तरफ तो ये चाहता है ना कि मैं दिन में 1000 गुना करूं, सुबह से शाम करूं, कितनी ना शुक्रियां करूं, कितनी ना कदरियां करूं, कितनी अल्लाह ताला की ना फरमानियां करूं, मगर जब मैं उसके आगे हाथ फैला के खड़ी हूं तो मैं ये चाहती हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, है ना। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान मुझसे माफी मांगे या कोई इंसान मेरे सामने बदतमीजी करे, हालांकि हम तो किसी के भी मालिक नहीं है, अल्लाह तो हमारा मालिक है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें माफ कर दे। लेकिन जब कोई बंदा हमारे सामने जरा हमारे मिजाज के खिलाफ बात करता है तो हम दिल इतना सख्त कर लेते हैं कि हम उसको माफ करने को तैयार नहीं होते। हालांकि अल्लाह तो हिब्बुना यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं ये चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? जो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है गुनाहगार बन के, आजिज बन के, फकीर बन के, और सबसे ज्यादा हम हैं जो अल्लाह ताला के हकूक में कमी करते हैं, जो उसका हक है जैसा उसको का हक दिया जाना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, वैसी फर्माबरदारी नहीं कर पाते, हम वैसी उसकी इबादत नहीं कर पाते, हम वैसी उसके सामने आजिज़ी नहीं कर पाते, हम जैसी शुक्र अदा करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते, जैसे उसका जिक्र करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते, कोई उसका हक हम अदा कर ही नहीं पाते। जितने उसके हम पर एहसानात हैं हम उसके जवाब में क्या करते हैं, मैं और आप हम सब जानते हैं, फिर भी हम चाहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे। लेकिन वो बंदा जिसके साथ हमने शायद ज़िंदगी में 1, 2, 10 कोई एहसान किए होंगे या शायद कुछ भी ना किया, हम चाहते हैं कि अगर उसने हमसे कोई बदतमीजी की, कोई हमारी शान में गुस्ताखी कर दी, हम कहते हैं हम कभी नहीं माफ़ करेंगे, मैं कभी नहीं भुला सकती इसको, मैं कभी भूलूंगी नहीं। बाकायदा हम इस चीज़ के बार बार यानी आदा करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मैं नहीं कभी भुला सकती, मुझे मैं नहीं कभी उस वक्त को भूल सकती, फलां ने वक्त में मैं फलां के घर गई थी, वो 10 साल पुरानी भी बात हो गई, हम लेके बैठे होते हैं, दिलों में कीने 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 भरे होते हैं, कहते नहीं ये नहीं मैं माफ़ कर सकती, मैंने बड़ा माफ़ करके देख लिया, ये नहीं माफ़ करूंगी, अब की दफ़ा नहीं मैंने माफ़ करना। और रब के आगे रोज़ गुनाह करते हो, रोज़ माफ़ी मांगते हो, हर रमज़ान में हम देखें कितनी माफ़ी मांगते हैं, रातों को जाग जाग के हम माफ़ियाँ मांगते हैं, फिर अगले रमज़ान तक हम फिर वैसे ही गंदे हो चुके होते हैं, फिर माफ़ी के लिए खड़े हो जाते हैं, और अब कितना करीम है कि फिर माफ़ कर देते हैं, और वो भी हमारे साथ वही मामला करे जो हम दूसरे इंसानों के साथ करते हैं, तो हम बताएं किधर जाएं। हम इसलिए माफ़ करें कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दिया कर। आप देखें अहदीस में और कुरान में और जगह जगह पे हमें दरगुजर करने की, माफ़ करने की कितनी तरगीब दी गई, यही फरमाया गया माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, जाने दो, और जो ऐसा करता है अल्लाह ताला आखरत में उसकी मग़फ़रत करता है, अल्लाह आखरत में उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा। अगर हम चाहते हैं ना कि हम दुनिया की ये छोटी सी ज़िंदगी अमन के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ गुजारें, तो उसका तरीका यही है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ कर दें, दूसरों के लिए जिएं और माफ़ी की रविश इख्तियार करें। कुरान इसीलिए हमें एक नुस्खा देता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हमीम सजदा में, ए नबी नेकी और बदी बराबर नहीं होते, तुम बदी को नेकी के साथ दफा करो, यानी बदी को कैसे दूर करो, नेकी करके, तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी पड़ी हुई है वो भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। और ऐसा हुआ, ये कोई सिर्फ बातें नहीं है, वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऐसे जानी दुश्मन थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार बन गए। किस वजह से? कि आपने बदी का जवाब बदी से नहीं दिया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, नेकी के साथ दिया। अबू सुफियान की मिसाल देख लें, आप सब जानते कि सारी ज़िंदगी उसने क्या किया, लेकिन फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या मामला किया, हम सब के सामने आई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो जो बरसों से दुश्मन थे, वो जिन्होंने आपको आपके घर से निकाला, वो जो जंगों में आपके आमने सामने आ गए, वो जिन्होंने आपके प्यारे सहाबा को शहीद किया, वो जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, वो जिन्होंने आपको पत्थरों से लहू लहान किया, जिन्होंने आपके दंदान मुबारक शहीद कर दिए, वो सब आके आपके गुलाम बन गए थे। सिर्फ एक वजह से आपने बुराई का जवाब भलाई से दिया, गलती करने वालों को हमेशा माफ कर दिया। बल्कि जब फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लोगों से कि बताओ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा, तो उन्होंने कहा था कि आप करीम हैं, करीम बाप की औलाद हैं, हम आपसे माफ़ी की तवक्को रखते हैं। उनको पता था कि ये इतने मतलब रहम दिल हैं, माफ़ करने वाले। और ताइफ़ का वाक़या तो आप सब जानते हैं, नबुवत का तकरीबन 10वां 11वां साल था, मक्का के तमाम जो आपके सपोर्टर्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था, हज़रत खदीजा फौत हो चुकी थी, अहले मक्का में से अब कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, अपनी अपनी जगह लोग फैसला कर चुके थे कि मुखालफत बराए मुखालफत, बस इनकी मुखालफत ही करनी है, जो जिनको ईमान लाना था ना वो तो ला चुके थे, अब सिर्फ वही लोग बाकी बचे थे जो आपके सख्त तरीन दुश्मन थे। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए कि चलो एक नई जगह है, वहाँ पे मैं दावत देता हूँ, हो सकता है वहाँ पे वो कोई ठिकाना मुझे मिल जाए और वहाँ पे रह के दावत का काम कर सकूँ। और ताइफ के 3 सरदार थे, उन्होंने इंतहाई हकारत और ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया था, इतना बुरा भला कहा, ना सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि आपके पीछे बाजारी लौंडे नहीं होते ऐसे ही ओबाज से नौजवान, वो लगा दिए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने शुरू कर दिए, आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा, यहाँ तक के खून से आपकी जूतियाँ भर गई थी, और तकलीफ़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल थे। एक ईसाई गुलाम ने आपको बाग में पनाह दी, आपके जख्म धोए, आपको अंगूर पेश किए, और रिवायात में आता है उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो बादल का जैसे साया आ गया, आपने सर उठा के देखा तो जिब्राईल अलैहि सलाम थे, उन्होंने कहा आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सलूक हुआ अल्लाह ने देख लिया, उसने आपके लिए मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा है, आप हुक्म दें आपके हुक्म की तामील की जाएगी। पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, अगर आप कहें तो मैं ताइफ की वादियों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दूँ। आप सोचें इतनी बड़ी कुव्वत किसके पास है, आज दुनिया में बम हैं, तोपें हैं, बंदूकें हैं, लेकिन उस वक़्त तो ऐसा कुछ नहीं था, बस फरिश्ता आपके एक हुक्म का मुंतज़िर था, एक हुक्म आपका। वो जिन्होंने आपको पत्थर मारे हैं, अभी मारे हैं, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, ज़्यादा देर गुजर जाए इंसान का फिर भी गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर भी ज़ख्म मुंदमिल हो जाते, फिर भी इंसान के दिल से बात निकल जाती है, लेकिन अभी ये फ्रेश अभी वाक्या हुआ है, अभी खून बहाया, अभी गालियां दी, अभी धुतकारा है, हमें तो कोई एक दफ़ा सलाम का जवाब ना देना तो हम याद रखते हैं कि मैंने उसको सलाम किया था, उसने सलाम का जवाब नहीं दिया था। और आपको फरमाया जा रहा है कि आप हुक्म दें इनको अभी पीस दिया जाए, और आपने फरमाया नहीं, शायद इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो इस दावत को कबूल कर लें। और वाकई ऐसा हुआ, ताइफ के लोग ईमान ले आए, पूरा अरब आपके सामने सरनगूं हो गया था, इस माफ़ी की वजह से ही ना। अगर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा लेते कि नहीं आज इनको ख़त्म कर देना, तो मुझे बताएं कि उसके बाद क्या होता, क्या इनकी औलादों को और उनकी औलादों को कभी ईमान लाने की तौफीक होती। एक दफ़ा कोई गए थे सऊदी अरब, तो वो कह रहे थे कोई उनको अरब मिला, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहने लगा कि मैं वहीं का रहने वाला हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से महफूज रहे थे, यानी ताइफ का। तो देखिए आज उनकी औलादों में से, उनकी औलादों में से आज लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं। तो ये तो एक बड़ा मामला था, लेकिन छोटे छोटे मामलात भी कई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे हुए जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का रवैया अख्तियार किया। एक दफ़ा एक बद्दू आया, उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर लपेट दी और इतनी ज़ोर से खींचा, इतनी सख्ती से खींचा कि आपके निशान पड़ गए, और क्या कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस माल में से देने का हुक्म दो जो तुम्हारे पास है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर मुस्कुराते रहे, ये नहीं कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये कोई तरीका है मांगने, आमों तो यही कहेंगे ना, हमसे तो कोई रूडली कोई बात करे तो हम कहेंगे चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। लोग आपको तकलीफ देते थे, ताने देते थे, तंग करते थे, बुरा भला कहते थे, और आपकी शान कितनी बुलंद है, क्या आपकी शान इससे घट गई? नहीं। क्या आपने नेगेटिव रिएक्शन शो किया? नहीं। हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई शान बुलंद नहीं, हम तो कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है, फिर भी हमें अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है कि कहीं मेरी इज्जत कम ना हो जाए। एक दफा कोई यहूदी आए थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो तुम पे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझ लिया था, हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब नहीं कुछ दिया, बस वालेकुम कहा, और तुम पर भी बस। ये नहीं कि ये क्या तमीज़ है, समझ आ गई है हमें जो तुम कह रहे हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, खादिम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहते हैं मैंने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपने कभी किसी बात पे उफ तक नहीं कहा, कभी मुझे ये नहीं कहा। इतनी हद तक बात हो जाती थी कभी कभी कि सहाबा कराम खुद फरमाते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दें हम इसकी गर्दन उड़ा दें इस मुनाफिक की, ऐ अल्लाह के नबी आप हुक्म दें हम इस गुस्ताख का सर कलम कर दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, छोड़ दो, जाने दो। हालांकि एक इशारे की ज़रूरत होती थी सिर्फ और उनका सारा अलग हो जाता। मगर इस सिचुएशन में भी जब बहुत जज्बाती मरहला होता, जब वो जज्बाती सिचुएशन होती, उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ब्त देखे कैसा होता था। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतों में से एक शख्स था, जब वो मर गया तो फरिश्तों ने इससे पूछा तुम कुछ अमल कमा के लाए हो? उसने कहा मेरे पास तो कोई अमल नहीं है सिवाय इसके कि मैं कर्ज दिया करता था, तो अपने नौकरों और खादमों से कहा करता था कि जो कर्ज अदा नहीं कर सकता ना उसको मोहलत दे दो, जितना वो आसानी से दे सकता है ले लो, और अगर वो नहीं दे सकता, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, तो माफ़ कर दो, और जितनी मोहलत वो मांगता था दे देता था। ऐ अल्लाह मैं ये सिर्फ इस उम्मीद पे करता था कि जिस तरह मैं अपने कर्जदारों को छूट देता हूँ, उनको माफ़ कर देता हूँ, उनको मोहलत देता हूँ, इसी तरह तू मुझे भी माफ़ कर देगा। इस पर अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया था। सुभान अल्लाह, यानी वो माफ़ करता था ना किस वजह से, कि ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ने इस बात की वजह से उसको माफ़ कर दिया। क्या हम कभी कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे इस वजह से माफ़ कर दे कि मैं भी तो उसको, मैंने भी तो माफ़ कर दिया फ़लाने मेरा इतना दिल दुखाया था, अल्लाह मुझे इस बात पे माफ़ कर दे कि मैं भी तो लोगों से दरगुजर कर लेती हूँ, तू मुझसे दरगुजर कर ले, क्या हम ये कह सकते हैं अपने लिए? या मैंने तो एक एक चीज़ को पकड़ के रखा हुआ और याद किए रखा। ये नहीं है कि इस्लाम में बदला लेने की इजाज़त नहीं है, बदला ले सकते हैं। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया व जज़ाउ सय्यातिन सय्यातु मिस्लुहा, बुराई का बदला बुराई है मगर उतनी ही उसी की मिसल, ले सकते हो लेकिन बराबर का बस। ये बराबर के बदले की जो शर्त है ना, वो ऐसी शर्त है कि आदमी जितना भी सोचे अंदाज़ा कर ही नहीं सकता बराबर का आखिर क्या होगा। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो उतना ही थप्पड़ बराबर का कैसे होगा? देखिए अगर आपने मुझसे 100 रुपये लिए, मैंने आपको 100 रुपया दे दिया, फिर तो समझ आ जाती बराबर क्या है। लेकिन अगर किसी ने मारा है, किसी ने चोट लगाई, किसी ने गाली दी, किसी ने जलील किया, उसके जवाब में उतना ही करना, उतना ही जलील करना, उतना ही बेइज्जत करना, हम कैसे इसकी कोई मेजर कैसे करेंगे, इसके पैमाने कहाँ से लाएंगे? जैसे एक साहब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि मेरे गुलाम हैं, नौकर हैं, वो मेरी खयानत करते हैं, बुरा भला काम करते हैं, इसके जवाब में मैं उनको डांट डपट भी करता हूँ, कभी मार भी लेता हूँ, तो मेरा और उनका क्या मामला होगा क्यामत के दिन? कभी मैं सोचती हूँ सुभान अल्लाह उन लोगों को कितनी फिक्र होती थी हर मामले में कि मेरा मामला क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं और उनके आमाल उनके लिए हैं, जो कुछ उन्होंने किया उसका हिसाब वो देंगे, जो कुछ तुमने किया तुम उसका हिसाब दो, एक एक पलड़े के अंदर यानी अल्लाह ताला के हाँ तो डाल के देख लिया जाएगा, जितना उन्होंने किया, उन्होंने अगर बुरा ज़्यादा किया तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हें उनको सज़ा मिलेगी, तुम्हारी छूट है, लेकिन अगर तुमने उनके साथ ज़्यादा बुरा किया तुम्हारी पकड़ है, और अगर बराबर बराबर हो गए तो छूट जाओगे। लेकिन जिसकी तरफ से ज्यादती हुई वो पकड़ा जाएगा। ये सुन के वो तो कहने लगे मैं तो फिर तबाह हो गया, ये आप कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदले में किसने ज्यादती की। फिर वो चले गए, उसके बाद वापस आया, फरमाया या रसूलल्लाह अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं इन सबको आज़ाद कर दूँ, मैंने सबको आज़ाद कर दिया क्योंकि मैं जान ही नहीं सकता कि बदले में किसने ज्यादती की, मैं अल्लाह के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता कि मैंने ज्यादती की हो। लिहाजा बदला लेने की इजाज़त तो ज़रूर है लेकिन उतनी ही, हाँ मगर आगे ही सूरह शूरा में है वमन आफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, और जो कोई माफ़ कर दे और इसलाह कर ले उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया, अब मैं दूंगा तुम्हें इसका अजर। तो अगर आप माफ़ कर देते हैं तो जो अजर अल्लाह ताला देगा ना, सोचें वो अपने शायान शान ही फिर देगा। शायद बदला लेने में हमें कुछ वो तस्कीन ना मिल सके, वो कुछ ना मिल सके, ज़ाहिर है जो अल्लाह के हाँ अजर जो पाएगा इंसान उसको जो मिल जाए। उसकी बारे में एक हदीस भी आपको बताती हूँ, इससे पहले मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग हमसे आके माफ़ी मांगते हैं, मसलन कोई उज़र पेश करते हैं, कोई कहते हैं मुझसे ये गलती हो गई या इस वजह से हो गया। अब उस वक़्त इंसान कहता है नहीं ये तो झूठा है, मैं तो कबूल नहीं करूँगी, ये तो गलत बात कह रहा है, ऐसे ही बस अब कहने लगी भी है। इसकी हमें इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है, इसलिए क्योंकि हदीस में आता है किसी मुसलमान के लिए अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना जायज़ ही नहीं है। और ये जायज़ नहीं कि जब वो सलाम करे तो ये इधर को मुंह फेर ले। बेहतर इनमें से कौन सा है जो पहल करे सलाम करने में, ये ना हो कि एक ने इधर मुंह कर लिया दूसरे ने उधर मुंह कर लिया और चले गए। हमारे आमने सामने कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, पता ही नहीं है कि वो इधर से गुजर रहा है, इधर उधर देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर उनमें से वो है जो सलाम में पहल करे। ये जायज़ नहीं है कि आप दूसरे ने सलाम में पहल कर दी तो आपने मुंह दूसरी तरफ कर ली। एक रिवायत में ये भी आता है कि जुमेरात को सब के आमाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, तो अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाह बख्श देता है, लेकिन जो आदमी दूसरे आदमी से नाराज़ हो, दुश्मनी रखता हो, कीना दिल में रखता हो, इसके लिए फरमाता है कि इसको 2 दिन की मोहलत दो, अगर ये 2 दिन में अपने मामलात को ठीक कर लेता तो माफ़ कर दो, इसलाह कर ले तो तब भी ठीक है, वरना ये काबिले माफ़ी नहीं है। अब देख लें हम नहीं जब माफ़ करते ना तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि नहीं फिर इसकी भी माफ़ी नहीं। तो हमारे यहाँ तो ये हाल होता है, बोल चाल ही बंद है, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, कता ताल्लुक है। अब देखें इस दुनिया में रहते हुए हमें परफेक्शन तो नहीं मिल सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे हम चाहते हैं, जैसा मेरा मिजाज है, जैसे मेरी बात है, इसी मुताबिक मुझे कोई मिले ऐसा कि जो कभी ऐसे कोई मेरी यानी मिजाज के ख़िलाफ़ बात ना करे, कभी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि मुझे अच्छी ना लगती हो, हमेशा लोग वैसा ही करें, वैसे ही चलें जैसे हम चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा आप याद रखें टकराव होगा, जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं टकराते हैं, कहीं झगड़ा होगा, कहीं फसाद होगा, कहीं किसी से तलख कलामी हो जाएगी, कहीं किसी की बात बुरी लग जाएगी। ये आपके घरों में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है, ख़ानदानों में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी हो सकता है, 2 बहन भाइयों में भी हो सकता है, माँ बेटी के दरमियान हो सकता है, क्योंकि इंसान दुनिया में जो है ना मुख्तलिफ मिजाजों वाले, मुख्तलिफ तबीयतों वाले, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, इख्तलाफ होगा, टकराव होगा, किसी की बात बुरी लगेगी, मगर इसके नतीजे में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है हो सकता है, मगर इसके एंड रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि अब गुस्से में हम बैठ जाएं, कभी दोबारा बात ना करें, अपनी इज्जत का मसला बना लें, कभी माफ ना करें, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरे की बुराई के बदले में भलाई कर लेंगे तो आपने बुराई को वहीं पे ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर आप बुराई के बदले में बुराई जारी रखेंगे, ना उसने सलाम किया ना आपने सलाम किया, उसने उधर मुंह कर लिया आपने उधर मुंह कर लिया, अना का मसला बना के आगे बढ़ गए, तो बात बढ़ती ही चली जाएगी। इस्लाम तो आज ही सिखाता है इंसान को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें हलाक कर देने वाली, ख्वाहिश के पीछे चलना, हिर्स की पैरवी, और आदमी کا اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، اور فرمایا یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں کیوں آگے بڑھ کے سلام کروں، میں کیوں پہل کروں، خود ہی کرنا ہوگا تو خود ہی کر لے گی. جو انسان اللہ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے نا، اس کے اندر سے تو بڑائی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ تو کبھی بڑا بن کے خود بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو جو بڑا مان لیا، جس نے اللہ کو بڑا مان لیا اس نے خود کو چھوٹا مان لیا. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتے. دیکھیں یہ تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ اللہ اکبر ہے، مگر ایک بات اس کو نہیں سمجھ آئی تھی کہ میں اصغر ہوں، میں ہوں چھوٹا. ہم مان لیتے ہیں اللہ بڑا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتے نا. حالانکہ دیکھیں کائنات میں بکھری بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں ہمیں یہی سبق دے رہی ہیں. جو چیز بھی زمین پہ کھڑی ہوئی ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، غور سے دیکھیں. تو اس وقت باہر دھوپ ہوگی، آپ دیکھیں دھوپ میں جتنی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں ان کا سایہ کدھر کو ہے؟ سایہ ہمیشہ نیچے پڑتا ہے. اس سے یہ راز پتہ چلتا ہے، ظاہری طور پہ تم چاہے کتنے ہی اونچے ہو جاؤ، کتنے ہی بلند ہو جاؤ، اپنے اندر کے وجود کو ہمیشہ جھکائے رکھو. سمندر کا دیکھیں، سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، مگر یہی سمندر کا پانی جب اوپر جاتا ہے بادلوں کی شکل میں، برستا ہے پھر آ کے بارش کی صورت میں، تو کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا پانی. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا تمہارے سینے میں چاہے کتنا ہی کھاری سمندر ہے، کتنا ہی تلخ جذبات امڑ رہے ہوں، مگر جب تم اپنے احساسات کو باہر نکالو، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طرح بن جاؤ. کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، دبا دینے والے. دیکھیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو شخص اس دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا. اور پتہ ہے دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک جنت ہے، تم پہلے اس کا ذائقہ چکھو گے نا تو تب تم آخرت کی جنت میں جا سکتے ہو. کون سی ہے دنیا کی جنت؟ جانتے ہیں آپ، دنیا میں جنت یہ ہے کہ جب انسان کو اس چیز میں مزہ آنے لگے کہ جس نے آپ کا حق مار لیا ہے، آپ اس کا حق دینا زیادہ پسند کریں. جب دل میں حسد، بغض، کینہ پالنے کی بجائے آپ کو ان کو کچل دینا زیادہ محبوب ہو جائے، جب کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے زیادہ آپ کو یہ پسند ہو جائے کہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے کیوں نہ رکھوں، یہ دنیا کی جنت ہے. جب کسی سے شکایت ہو تو انتقام لینے کی بجائے آپ کو دل کو ٹھنڈک اس چیز سے ملے کہ میں معاف کر دوں، یہ دنیا کی جنت ہے. جب دنیا میں بے فکری سے کہکہ لگانے سے زیادہ آپ کو اس چیز میں سکون آئے کہ میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤں، یہ دنیا کی جنت ہے. جب انسان کو دنیا کی مصلحتوں سے زیادہ آخرت کی مصلحتیں پیاری ہو جائیں نا، تو یہ دنیا کی جنت ہے. تو دنیا کی جنت میں رہنا کوئی ناممکن نہیں ہے، بس اس دنیا میں رہ کے انسان نے جنت والے اعمال کرنے. جس آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے نا کہ جنت والے اعمال اس کو زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگے، ان کو کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہو، تو سمجھے وہ جنت کی فضاؤں میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم رہ سکتے ہیں. یہ نہیں آپ کو میں کہہ رہی ہوں کبھی آپ کو کسی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، اختلاف میں نے بتایا وہ ہو سکتا ہے، یہ فطری بات ہے. صحابہ میں بھی ہو جاتا تھا، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود میں ایک دفعہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تھا، مگر وہ ایک دوسرے کو اس کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہنے لگتے تھے، ایک دوسرے کو برا سمجھنے نہیں لگتے تھے، کینے دل میں نہیں پال لیتے تھے، نہ ان کی آپس کی محبت ختم ہوتی تھی، نہ مسلمانوں کی جماعت میں کوئی فرقہ فرقہ ہو جاتا تھا، نہ ایک دوسرے کے گرمان پکڑتے تھے، نہ توتو میں میں ہوتی تھی، نہ کفر کے فتوے لگاتے تھے. تو اختلاف ہونا نیچرل بات ہے، مگر یہ کیا کہ ہم اس سے اتنا آگے بڑھ جائیں. دیکھیں ایک بات میں اپنے لیے بھی اور آپ سب سے بھی کہتی ہوں، دیکھیں اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، میرے لیے بھی یہ بہت آسان ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک درس دے دوں، आपके लिए भी आसान है, हदीसें याद कर लेना, ये कोर्स ले लेना, वो कोर्स ले लेना, ये पारा इतने कर लेना मुकम्मल, इतने टेस्टों में इतने नंबर ले लेना। लेकिन हमारा असल इम्तिहान ये नहीं है कि हम कितने कोर्स ले रहे हैं, कि टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए हैं, उसके कितने नंबर आए हैं। पता है हमारा असल इम्तिहान क्या है? हमारा असल इम्तिहान अमल के मैदान में है। जब मेरा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है जो मुझे तकलीफ़ दें, जो जो मेरे से ऐसी बात करें कि जो दुखी दुख देने वाली हो, जो सताएं, जो बुरा भला कह दें, जिनसे मुझे कोई अजियत पहुंची हो, जब उनसे मेरा मामला हो, तब है मेरा टेस्ट। ये एक्चुअल टेस्ट है। हम नॉर्मल हालात में, मैं आपके साथ अच्छी, आप मेरे साथ अच्छे, हम इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, हमें आप मुझे दीनदार समझे, मैं आपको दीनदार समझू, हिजाब हमने लगा लिए, बस जी हम बड़े इस्लामी हो गए। लेकिन जब अमल का मौका आए तो हम गैर इस्लामी बन जाए तो हम तो फेलियर हैं। जब मुआफिक हालात हों, मेरी मर्जी के हालात हों, तब हम धुआंधार तकरीरें करें, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुनाएं, लेकिन मेरे मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो मैं एकदम आपे से बाहर हो जाऊं। ऐसे सारे जो मौके होते हैं ना, उनके जरिए हमारा रब हमें टेस्ट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन अभी इस काबिल बन गया है कि मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। मगर ऐन उस मौके पे जब हमारा इम्तिहान होता है, हम उस वक्त फेल हो जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे सामने जन्नत का दरवाज़ा खुला हो, और मगर ऐन उस मौके पर जब जन्नत में मैं दाखिल हो सकती हूँ, उस वक्त मुझे रोक दिया जाए, तो ऐन उस मौके पे हम नाकाम हो जाते हैं। जब हमें उस वक्त सबूत देना है कामयाबी का, उस वक्त हम नाकाम हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर के जो सीने का जो ये सीना पत्थर हो गया ना, इसको हमने नरम मिट्टी बनाना है। अल्लाह ताला कुराने पाक में फरमाते हैं ना, वाइदा मा गदिबू हुम यगफिरून, जब उनको गुस्सा आता है वो माफ कर देते हैं। यानी वो रिएक्शनरी नहीं होते कि बस उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, बस अब ऐसे हो गया। चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे बच्चों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, जाहिर है हम इंसान हैं, गुस्सा तो हम आएगा जब गुस्से वाली बात होगी। लेकिन जब हम गुस्से के जवाब में, एक गुस्सा दिलाता है उसके जवाब में हम गुस्सा ही नहीं उसको देते, दरगुजर कर देते, जाने देते। आप देखें नेचर में भी यही कानून है। आप देखते हैं अल्लाह ताला ने इस दुनिया में चीज़ों को इसी ढंग पे बनाया है। एक दरख्त को देखें आप, वो उसको क्या देते हैं आप? आप मिट्टी देते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं, वो आपको क्या दे रहा है? फल फूल ना? तो उसने क्या किया, आपने उसको मिट्टी दी, उसने अपने अंदर का जो सिस्टम था उससे क्या निकाल के दिया? फल फूल, खुशबू, जायके। उसको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो अपने अंदर जज़ब करके बाहर क्या देता है? ऑक्सीजन का तोहफा देता है। तो हम गुस्से को जब लेते हैं तो पी के उसके बाद क्या दें? फूल, खुशबुएं, माफी, माफ कर दो, इंतकाम की बजाय जाने दो, तो अल्लाह तुम्हें अजर देगा। क्या इतना ही हमारे लिए काफी नहीं है कि अल्लाह से मुझे अजर लेना? मेरा अजर मेरे अल्लाह के जिम्मे हो गया, और जिसका जिम्मा अल्लाह ताला ले ले तो फिर सोचें ना, फिर उसके लिए तो कामयाबी कामयाबी है। बेशक माफ़ कर देना आसान नहीं है, लेट गो करना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहती बहुत आसान है, इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में ही कहा 100 नफल पढ़ लेने आसान है, माफ़ करना मुश्किल है। क्योंकि शैतान नहीं है इस तरफ इंसान को आने ही नहीं देता, दिल इतना सख्त कर देता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, मैंने जिम्मा ले लिया, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। तुमने मेरे लिए बर्दाश्त किया ना, तुमने मेरे लिए माफ़ किया, तो ये अमल कभी ज़ाया नहीं होगा। इसका जो चीज़ तुम्हें इंसान नहीं दे सके ना, वो अल्लाह से तुम पालोगे। अब वो हदीस मैं आपको बताती हूँ कि इंसान जब क़यामत के दिन पहुँचेगा तो क्या होगा, वहाँ पे अल्लाह ताला कैसे अजर देगा। कि हज़रत अनस रिवायत फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे हुए थे, और बैठे बैठे आप अचानक मुस्कुराए, और इतना मुस्कुराए कि सामने के दांत दिखाई देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कहा लगा के कभी नहीं हंसते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुस्कुर जब खुशी होती थी ना, तो इस तरह हंसते थे कि बस दांत दिखाई देने लगते थे। तो लोगों ने पूछा है, अल्लाह के रसूल, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने हंसाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि मेरी उम्मत के दो लोग हैं अल्लाह के हजूर अपना मुकदमा लेकर खड़े में। एक आदमी ने कहा, ऐ रब, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया, इसका बदला मुझे आप यहाँ दिलवाइए। अल्लाह ताला ने उससे कहा, तुम्हारे भाई से मैं तुम्हें क्या बदला दिलवाऊँ? इसके पास तो कोई भी नेकी नहीं है कि मैं कुछ नेकियाँ लेके तुम्हें दे दूँ। उसने कहा, फिर मेरे गुनाह लेके इसके ऊपर डाल दें। ये कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा अजीब दिन होगा जहाँ आदमी के लिए ये बात भी बड़ी गनीमत होगी कि वो गुनाहों का जो बोझ अपनी पीठ पे लाद के लाया, इसमें कुछ कमी हो जाए। वो कहेगा, ये नेकी नहीं मिलती तो कम से कम जो गुनाह हैं उनमें ही कुछ कमी हो जाए। तो जब मुदई ये कहेगा कि अगर इसके पास देने के लिए नेकियाँ नहीं हैं तो मेरे कुछ गुनाह ही लेके इसके हवाले कर दें, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा तुम ज़रा नज़र उठा के देखो, ऊपर देखो। वो निगाह उठा के देखा, इतना एक उम्दा जगह होगी, उसके अंदर सोने के मकान होंगे जो मोतियों से जड़े होंगे, और वहाँ हर किस्म की नेमतें होंगी। वो कहेगा, ये किसका महल है? शायद ये किसी नबी का है, किसी सिद्दीक का है, या किसी शहीद का है। ये इतना आला मकाम होगा कि उसके जहन में यही आएगा कि इतना बड़ी आला मकाम तो इन्हीं को मिल सकता है। इतने मतलब इतना खूबसूरत ऐसी जगह तो किसी आम आदमी की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये उसका है जो इसकी कीमत दे। उसने पूछा, इसकी कीमत कौन दे सकता है? इतना कीमती, किसके पास इतनी दौलत है कि वो इसकी कीमत अदा कर सके? अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तू चाहे तो तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। वो कहेगा, मेरे पास क्या रखा है जो मैं इसकी कीमत दे सकूं? अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तू इस बंदे को माफ कर दे तो तुझे मैं ये मकाम दे दूंगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा, मैं फिर इसको माफ़ कर देता हूँ। इस तरह अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में दाखिल कर देगा। इससे अल्लाह की रहमत का भी पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि सुभान अल्लाह, माफ़ कर देने के ऊपर अल्लाह ताला क्या क्या चीज़ें नवाजेगा। कि वो इंसान सोच रहा होगा, ये तो किसी नबी के घर हो सकते हैं, किसी सिद्दीक को, शहीद को मिल सकते हैं, मेरे जैसे को कहाँ से मिलेंगे? सिर्फ एक माफ़ कर देने के ऊपर इतना बुलंद मकाम। हमें अगर असल में हमारे यकीन वैसे नहीं है ना, अगर हमें अपने सामने नज़र आए, जैसे उसको सामने नज़र आए, उसने कहा, ओ माँ ने माफ़ किया, ये कितनी ऐसी जगह मिल जाए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अगर हमें वाकई जन्नत इसी तरह नज़र आती हो ना, ऐसा यकीन हो, तो हमें भी माफ़ करना मुश्किल ना लगे। नहीं ना, हमारे लिए जन्नत तो तब की बातें देखी जाएगी, इस तरह से हम उसका तसव्वुर करते हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल होता है माफ़ करना। और ये भी मसला है कि हम में से हर एक ने अपने आप को बड़ा मुतमईन रखा हुआ है कि अच्छा, हम तो इतनी इतनी ये नेकियां करते हैं, अगर नहीं भी माफ़ किया तो क्या हो गया? बस यही काम नहीं ना मैंने किया, बाकी तो इतने सारी मैं नेकियों के काम करती हूँ। तो असल बात ये है कि देखें, जन्नत जो है ना वो आसान नहीं है। जन्नत में ले जाने वाले सारे ही काम बड़े मुश्किल हैं। जो आप नेकियाँ करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत पाने के लिए इंसान जितनी भी नेकी कर ले उसको वो कम लगेगी। वो कहेगा, ये भी कम है, हाय काश मैं और कुछ बना लेता, कुछ और कर लेता। और इसके ऊपर तो इतना ज़्यादा अजर है, उस दिन तो सबसे ज़्यादा इंसान यही चाहेगा ना, मुझे माफ़ी मिल जाए, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और दुनिया में भी हमारी ये ख्वाहिश होती है, जिस इंसान को अपने गुनाह बोझ लगने लगते हैं, जिस इंसान को दिल पर ये भार रहता है कि गिल्ट रहता है कि मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, और वो ऐसे ही मुंह से नहीं कहता, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ जी, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम तो बड़े, वो मुंह से नहीं कह रहा, उसको वाकई ये एहसास है कि मैं गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मैंने बहुत खताएं की हैं, अल्लाह माफ़ी कैसे मुझे मिलेगी। जिस इंसान को ये एहसास रहता है ना, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरे को माफ़ करना, क्योंकि वो फिर ये सोचता है कि इसको माफ़ करके मैं अपनी माफ़ी के लिए अल्लाह से दरख्वास्त कर सकती हूँ, मैं फिर इस अपने अमल को एक यानी वसीला बना सकती हूँ। जैसे वो जो तीन लोग गार में थे ना, उन्होंने जब कहा था ना कि अल्लाह अगर तुझे मेरा ये काम पसंद हो तो अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे, याद है ना आपको ये हदीस में, तो अल्लाह ताला ने वो पत्थर को सरका दिया आखिरकार वो तीनों की। अब इतनी लंबी हदीस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उस पत्थर को हटा दिया और वो बाहर निकल आए खैर वाफियत के साथ। तो उस हदीस से हमें पता चलता है कि आप अपने नेक आमाल का वसीला दे सकते हैं। कोई नेकी आपने की हो तो आप कह सकते हैं अल्लाह तुझे मेरा वो अगर ये काम पसंद आया हो ना, जो आपने वाकई इखलास के साथ किया हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, तो आप ये कह सकते हैं अल्लाह ताला तुझे मेरा ये काम अगर पसंद आया ना, अल्लाह इसके बदले में तू मुझे ये चीज़ मेरा मसला हल कर दे, या जो भी आपकी ख्वाहिश है या जो भी आपकी दुआ है। तो जो ये सोचता है कि अल्लाह मैं बड़ी गुनाहगार हूँ मुझे माफ़ी चाहिए, वो ये ज़रूर करेगा कि मैं इसको माफ़ करती हूँ, अल्लाह इसके बदले में तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे एक बंदे को माफ़ किया। तो देखिए दीनदारी असल में है ही ये चीज़ कि इंसान अपनी अना को कुचले, इंसान अपने आप में जीने की बजाय ना अल्लाह की रज़ा में जीने लगे, इंसान को दुनिया के फ़ायदों से ज़्यादा ना आखरत के फ़ायदे अजीज हो जाएं। तो यही करेंगे तो हम वाकई हकीकी दीनदार होंगे, अदरवाइज़ तो फिर बस बातें ही हैं ये। अभी हम कैसे करें, हम बड़े कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं ना, हम चाहते भी हैं हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, हमें वसत कल्बी मिल जाए, हमारा दिल बड़ा हो जाए, लेकिन हमसे किया नहीं जाता। तो क्या करें, आप कैसे इतने बड़े हौसले लेकर आए? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करूँ। देखिए एक दरख्त होता है, एक ढाक का दरख्त होता है, मामूली सा दरख्त है, जब फॉल आता है ना तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, वो एक बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह हो जाता है। लेकिन जब बहार आती है, स्प्रिंग आता है, मौसम बदलता है, इतने खूबसूरत उसके ऊपर फूल खिल उठते हैं, वो सूखी लकड़ी का जो ढांचा था ना पहले, वो ऐसे लगता है कि रंगीन फूल हैं, कलरफुल फूल हैं, उनसे ढक गया है, ऐसे लगता है जैसे एक महरूम एक बेकीमत वजूद को अल्लाह ताला ने कीमती बना दिया। तो हम भी अल्लाह से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हम भी एक ढाक का दरख्त हैं, सूखा हुआ दरख्त, तू चाहे तो हमारे ऊपर भी हसीन फूल खिला दे, या अल्लाह मैं एक सूखी टहनी हूँ, तू चाहे तो मुझे भी सरसब्ज व शादाब कर दे, या अल्लाह मैं बेमानी वजूद हूँ, तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी को भी मानवियत दे दे, या अल्लाह मैं जहन्नुम के किनारे पे खड़ी हूँ, तू चाहे तो मुझे भी जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरा दिल तंग है, तू चाहे तो मेरे दिल को खोल दे, मुझे इतनी वसत दे दे कि मैं लोगों को माफ़ कर दिया करूँ, मुझे इतना बड़ा दिल दे दे अल्लाह, मुझे इतना बड़ा हौसला दे दे कि मैं लोगों की बातों को बर्दाश्त कर जाया करूँ, गुस्से को पी जाया करूँ, अल्लाह मुझे ऐसे अखलाक अता फरमा दे जैसे अखलाक तेरे नबी के थे, मुझे ऐसा हौसला ऐसी बर्दाश्त ऐसी कुव्वत अता फरमा दे जैसे सहाबा कराम में हुआ करती थी। तो इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे और दुआ के बाद साथ कोशिश करेंगे और अपने गुनाहों को सामने रखा करेंगे, जब दूसरे की गलती आए अपनी गलतियों को शुमार किया करें तो इंशाल्लाह माफ़ करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला बनाए ताकि हम उससे भी माफ़ी के दरख्वास्त खा हो सके। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे और हमसे दरगुजर फरमा दे, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारा आज का बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की जो भी दानिस्ता नादानिस्ता कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी हमसे गुनाह हुए, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब से दरगुजर फरमा दे। ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا دے. اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں یہ محفل سجی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور محبتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ان کو یہاں پہ رہنا اور بسنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے بھی، افشاں کے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا. جو آئے ہیں چل کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور جانا قبول فرمائے. جنہوں جو سنا ہے اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ افشاں کے والد کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقی بھی جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.